मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज।
ओम शांति। अभी हमारे बीच एक ऐसी महान हस्ती आ रही हैं जिन्होंने परमात्मा के दिल को जीता हुआ है, लाखों आत्माओं के दिल को जीता हुआ है, जिन्होंने पांचों ही महाद्वीपों में 70 से अधिक देशों में लोगों के अंदर आध्यात्मिक जागृति फैलाने के लिए अपनी सेवाएं वर्षों से देते आ रहे हैं। तो मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ राजयोगिनी आदरणीय शीलू दीदी जी, आप कृपया मंच पर आए और अपना आसन सुशोभित करें। सभा से मेरा अनुरोध रहेगा कि जैसे ही दीदी मंच पर आए, आप सभी जोरदार तालियों से दीदी का तहे दिल से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आप ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर राजयोगा टीचर हैं। माउंट आबू में जितने भी राजयोगा शिविर, राजयोगा ट्रेनिंग इंटेंसिव्स ऑर्गेनाइज होते हैं, आप उसके डायरेक्टर भी हैं। राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग के तहत जैसे आप सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं, वैसे हमारा एक एजुकेशन विंग भी है, आप उसके वाइस चेयरपर्सन भी हैं। आदरणीय दीदी जी को 1960 में 12 साल की कोमल आयु में आध्यात्मिक ज्ञान मिला, जब दुनिया की नकारात्मकता का बोध भी नहीं था, उस समय आपको आध्यात्मिकता का स्पर्श मिला। अपनी पढ़ाई करते हुए आपने राजयोग का गहन अभ्यास किया और आपको इतनी सुंदर दिव्य अनुभूतियां होने लगी कि जैसे ही आपका साइंस ग्रेजुएशन पूरा हुआ, आपने अपने जीवन को आध्यात्मिक सेवाओं के लिए, जनमानस की सेवाओं के लिए समर्पित करने का अहम निर्णय ले लिया सन 1969 में। मुंबई, बेंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद, अफ्रीका, मॉरिशियस जैसे कई स्थानों में अपनी सेवाएं देते हुए कई राज्यों का मेडिटेशन सेंटर्स खुलवाने के आप निमित्त बने। 1976 से आप हेडक्वार्टर्स पांडव भवन माउंट आबू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सबसे अहमियत की बात है, ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन की ओर से टीवी चैनल्स में सेवा की शुरुआत आप ही के माध्यम से सन 1993 में हुआ। जी टीवी, सोनी टीवी, हाँ जी हाँ जी, तालियां बजाइए। जी टीवी, सोनी टीवी, आस्था, संस्कार जैसे कई चैनल्स में आपके प्रोग्राम्स आते रहे और वो इतने पॉपुलर होते गए कि आज की तारीख आप सबको पता होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 24 आवर्स फ्री टू एयर एडवर्टाइजमेंट फ्री पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग टीवी चैनल, दो चैनल्स चलते हैं जिसमें आज भी आपके कई प्रोग्राम्स आते रहते हैं। आपके टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के इंटरव्यूज के जरिए कईयों को प्रेरणाएं मिलती रहती हैं अध्यात्म को अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाने के लिए, आप अनेकों को प्रेरित करती रहती है। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी वाणी में एक ऐसी मिठास है, आपकी वाणी में ऐसा एक ओजस्वी प्रभाव है कि आप अनेक आत्माओं के जीवन को बदलने की क्षमता रखती हैं। स्ट्रेस फ्री लिविंग, पॉजिटिव थिंकिंग जैसे कई मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्सेज आप कॉरपोरेट्स में भी कराते रहते हैं। मैं दीदी के लिए दो शब्द कहना चाहूंगी, हर शब्द मोती, हर भाव मोती, मोतियों की आप चैतन्य खान। हर शब्द मोती, हर भाव मोती, मोतियों की आप चैतन्य खान, मोती सा बनाने हरेक जीवन, मोती भर भर करते दान, मोती भर भर करते दान। अब ये आपके ऊपर है कि इन एक घंटों में आप कितनी मोतियां अपने दामन में बटोर पाते हैं। आदरणीय दीदी जी, मैं अनुरोध करूंगी बहनों से कि दीदी जी का स्वागत करेंगे गुलदस्ते एवं बैच के द्वारा। आप सभी पुनः जोरदार तालियों से। ये वो दीदियां हैं जिन्होंने हमारे संस्था के संस्थापक, हमारी वरिष्ठ दादियों के अंग संग रहकर अपने जीवन को एग्जाम्पल के रूप से सेट किया है। आदरणीय दीदी जी बहुत सुंदर विषय पर प्रकाश डालेंगे, रोल ऑफ ब्लेसिंग इन हेल्थ केयर। कहते हैं जहां दवा नहीं काम करती वहां दुआ काम करती, दुआ का रोल क्या है आप स्पष्ट करेंगे। आदरणीय शीलू दीदी जी,
ओम शांति। हम चाहेंगे कि आप हमारे बाद सभी कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। सुप्रीम सर्जन, परमात्मा की अति प्रिय संतानों, मेरे सर्व प्यारे रूहानी भाई और बहनों, बहुत खुशी हुई आप सबको यहाँ देखकर, इस सुंदर मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स में जहाँ माइंड बॉडी मेडिसिन के इस सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में आप सब भाग लेने आए हैं और मुझे यह बहुत बढ़िया विषय दिया गया है, रोल ऑफ ब्लेसिंग्स इन हेल्थ केयर। दुआएं क्या चीज है पहले हम इसको समझेंगे, दुआओं के पात्र कौन बनते हैं, दुआएं कौन दे सकते हैं और दुआएं किसको मिलती है, और उसके भी पहले दुआओं की आवश्यकता क्यों है। वैसे तो हम कहते हैं कि दवा अकेले काम नहीं करती, दुआ भी एक दवा है, और दुआ 80% काम करती है, दवा तो केवल 20% काम करती है। तो दुआओं का महत्व दवा से भी अधिक है, लेकिन दुआएं मांगी नहीं जाती है। कई बार हम देखते हैं लोग कहते हैं आप हमें दुआ दीजिए, हमारे ऊपर दुआ करिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो दुआ और प्रार्थना को एक ही समझते हैं। ईश्वर से भी हम दुआएं मांगते हैं, प्रार्थना तो करते ही हैं, पर दुआएं मांगी नहीं जाती है, दुआएं कमाई जाती है। जैसे कोई व्यक्ति कमाता है, अपनी मेहनत से कमाता है, वो कमाई सच्ची कमाई होती है। इसी प्रकार दुआएं भी एक बहुत बड़ी कमाई है। और ये दुआएं कैसे कमाई जाती है? मन, वचन और कर्म से, मांग कर नहीं। हमारी किसी के प्रति भी शुभ भावना होती है, शुभ कामना होती है, ये जैसे उनको दुआएं दी जाती है, और वो व्यक्ति हमारी शुभ भावना शुभ कामना से दुआ कमाता है। हमारे बोल अगर शुभ हैं, श्रेष्ठ हैं, अवश्य उसे भी दुआएं मिलती है। हमारे कर्म किसके प्रति सेवा की भावना से है और उससे उनको लाभ मिलता है, तो इससे भी हम उनको दुआएं देते हैं, लेकिन मांगी नहीं जाती है, वो कमाई जाती है और दिल से दी जाती है। जैसे गुणों के लिए भी हम कहते हैं, गुण जो है वैल्यूज, वो किसको सिखाए नहीं जाते हैं। आई कैन नॉट टीच वैल्यूज, एक्चुअली वैल्यूज हमारे जीवन में जो है वो प्रेरणा देते हैं दूसरों को, इसलिए कहते हैं वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट बट दे आर कॉट, दे आर एक्वायर्ड नॉट बाय टीचिंग देम बट थ्रू इंस्पिरेशन। इसी प्रकार दुआएं भी जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जिसने अपने जीवन में दुआएं कमाई है वो सदा अपने जीवन को सुखी अनुभव करता है। और दुआओं का ऑपोजिट है बद्दुआएं। बद्दुआएं भी बहुत मिलती है लोगों को। कई बार ट्रकों के पीछे आप देखेंगे लिखत होती है, पहले तो बहुत पढ़ते थे ट्रक के पीछे, बुरी नजर वाले क्या तेरा मुंह काला। तो जो बुरी नजर रखता है उसको बद्दुआ मिल जाती है, तो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये उसको बद्दुआ मिली क्योंकि उसने बुरी नजर रखी। तो किसी व्यक्ति को तो बद्दुआ मिलती है क्योंकि उसने बुरी नजर रखी, और किसके लिए कहते हैं कि उनकी नजर से मैं निहाल हो गया, किसी गुरु की नजर पड़ी मुझ पर तो मैं उस गुरु के लिए कहूंगी उसने तो एक नजर से मुझे निहाल कर दिया। तो किसकी नजर तो निहाल करती है और किसकी नजर बद्दुआ दिलाती है। अब इसका आधार क्या है? इसका आधार वैसे हमारी सोच है। हम कैसे सोचते हैं उसी सोच के आधार पर जो वाइब्रेशंस बनते हैं वही दुआ या बद्दुआ का काम करते हैं। और ये दुआ या बद्दुआ हम अपने आप को भी दे सकते हैं। कई अपने लिए बहुत बुरा सोचते हैं, बहुत बुरा सोचते हैं अपने लिए, मैं तो कोई काम का नहीं हूं, मेरी तकदीर ही ऐसी है, बहुत अपने लिए बुरा सोचते हैं। ये जैसे अपने आप को बद्दुआ देते हैं और कोई दूसरे के लिए भी बद्दुआ देते हैं, बुरा सोच करके, नेगेटिव सोच करके। तो सोच में हमारी दुआएं या बद्दुआएं भरी पड़ी है। अब ये तो बातें समझना एक आध्यात्मिक रूप है, लेकिन दुआएं कमाई कैसे जाती है? मेहनत से ही कमाई जाती है, मांग कर नहीं। अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना रखकर, किसको सहयोग देकर, किसके प्रति दिल से उनकी सेवा कर हम दुआएं कमाते हैं। एक व्यक्ति नेत्रहीन है, उसको रोड क्रॉस करना है। अब लकड़ी तो है लेकिन दिखाई नहीं देता, और हम उसका हाथ पकड़कर उसको रास्ता क्रॉस कराते हैं। छोटा सा ये मिसाल है, तो कितनी दुआएं देता है वो, बहुत दुआएं मिलती है। छोटी सी बात है, जस्ट बीइंग काइंड टू समवन। तो जब हम किससे इस प्रकार की सेवा करते हैं उसकी दुआएं मिलती है। अब दुआएं कोई भी दे सकता है, ऐसे नहीं कि केवल बड़े ही दे सकते हैं। वैसे बड़ों की दुआएं तो बहुत काम आती है, माता पिता की दुआएं कितनी काम आती है। वैसे भी गीत भी है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। तो जितनी दुआएं हम कमाते जाते हैं, अर्थात दिल से सेवा करते जाते हैं विदाउट एनी थॉट ऑफ रिटर्न, जिसको हम कहते हैं निस्वार्थ सेवा, दिल से सेवा, प्यार से सेवा, जी जान से सेवा, वो सेवा दुआ देती है। अगर उस सेवा में थोड़ा भी स्वार्थ भरा हुआ है वो दुआ नहीं देगी, क्योंकि पहले ही हम सोच लेते हैं इससे मुझे मिलेगा क्या। हम किसी गरीब की सेवा करते हैं सोचते हैं इससे तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। पर एक अमीर की सेवा करते हैं तब सोचते हैं इससे तो बहुत कुछ मिलेगा, तो चलो करो सेवा। परंतु दिल से सेवा, उसकी दुआएं मिलती है। और वो निस्वार्थ सेवा हम कैसे करें, हेल्थ केयर में कैसे करें निस्वार्थ सेवा, जो हम दुआएं कमा सके। तो एक तो है कि डॉक्टर दुआ कमाए, और दूसरा है वो पेशेंट, अगर उसकी उसके जीवन में दुआएं है, बहुतों की दुआएं मिली है उस पेशेंट को, तो दवा उतना काम नहीं करेगी पर दुआएं उसको मदद करेगी। और भगवान की तो बहुत बड़ी दुआएं हैं। कई बार डॉक्टर को पेशेंट कोई बहुत ही सीरियस पेशेंट है और डॉक्टर को ऑपरेशन करना है उनका, तो उसके रिश्तेदार कहेंगे डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा ना, चिंता तो रहती है कि ठीक हो जाए। तो डॉक्टर यही कहता है ना, आप भगवान को याद करो, आई कैन ओनली ट्रीट बट क्योर उनके हाथ में है, मैं केवल ट्रीटमेंट दे सकता हूं, लेकिन उसका निदान करना, उसका क्योर करना ये तो भगवान के हाथ में, इसलिए आप भगवान को याद करो। मुझे याद है कि कई ऐसे प्रसंग आते हैं जब बहुत कोई बड़ा नामी ग्रामी पेशेंट होता है और उसका ऑपरेशन चलता है तो बहुत मिलना चाहते हैं उनसे, तो डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि आप इनको बाहर बिठाओ और इनको को प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, और क्या पता प्रार्थना से चमत्कार हो जाए। और सचमुच देखा गया है प्रार्थना से बहुत चमत्कार होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते हैं। डॉक्टर खुद भी कहता है कि मैंने तो समझा था कि ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल है, कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे, लेकिन जब ऑपरेट करना शुरू किया ये तो इतना सहज हो गया, पता भी नहीं चला। वो पेशेंट खुद भी कहता हमको ही पता नहीं चला। और कई तो यहां तक कहते हैं कि भगवान की इतनी मदद थी, डॉक्टर ने जो किया वो तो ठीक, लेकिन भगवान की मदद थी। तो देखो इसको कहते हैं दुआएं। तो दुआएं कमाना है ये सदा लक्ष्य रखो। दुनिया में कुछ भी काम नहीं आएगा और सब हाथ खाली रह जाएंगे। आज भी हम बाबा के महावाक्य सुन रहे थे, सवेरे रोज हम मुरली सुनते हैं, जो शिव परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा हमें महावाक्य उच्चारण किए हैं जो हम सुनते हैं। यही बाबा ने कहा, अंत में क्या काम आएगा, धन काम नहीं आएगा, मनुष्य भी काम नहीं आएंगे, अंत में केवल दुआएं काम आएगी बस। एक बहुत बड़ा उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। हम दुबई गए थे तो वहां पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हॉस्पिटल में एडमिट था, तो मुझे कहा गया कि बहन जी आप उनसे मिलने चलिए, उनको कैंसर है। तो मैं गई मिलने के लिए, तो जैसे मैं उनके पास गई वो मैंने देखा वो बहुत रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, इतना रो रहा था मेरे सामने, बहुत रोया। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? कहते हाँ, कहता है बहन जी मैंने सबके लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, लेकिन सब ने मुझे धोखा दे दिया। वो धोखा दे दिया इसीलिए मैं रो रहा हूं। तो जो उनके पास थे मैंने कहा इनका परिवार कहाँ है? तो कहा कि उनकी पत्नी तो मुंबई में है, वो भी एक बड़ी सर्जन है, बड़ी पोस्ट है उनकी, और तो वो तो बिजी आ नहीं सकती, बच्चे बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी नहीं आ सकते हैं, और ये बेचारा अकेला हॉस्पिटल में पड़ा है, कोई फैमिली मेंबर्स नहीं सामने, और धन की कोई कमी नहीं, लेकिन अकेला। तो हमने उसको कहा कि आप उसके लिए रो क्यों रहे हो? ये तो सब जो भी रिश्ते नाते ये तो सब कर्मों का हिसाब किताब है, और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है कोई किसी का नहीं है, ये भी समझ लो। अगर कोई धोखा देता है ये कोई कर्मों का हिसाब किताब था, क्योंकि जीवन में कर्मों का हिसाब किताब बहुत मान्य रखता है। बस भगवान तो आपका साथी है ना, क्यों आप दुखी होते हो? आप भगवान को अपना साथी बनाओ, वही सच्चा साथी है, उसी को अपना सच्चा मित्र बनाओ, सच्चा दोस्त बनाओ, और उसके लिए आप थोड़ा मेडिटेशन करो। मेडिटेशन के द्वारा आपको बहुत शांति मिलेगी, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे आपका ये रोग तो जाएगा ही, लेकिन जो आपको शांति मिलेगी उससे आपको बहुत हिम्मत भी आएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। तो उसने कहा ठीक है बहन जी मैं मेडिटेशन करूँगा। तो हमारी बहनें जो दुबई में सेंटर पर रहती है उनको कहा कि आप इनको रोज 1 घंटा मेडिटेशन सिखाओ। तो सचमुच वो हॉस्पिटल में पेशेंट के रूप में है। कहां वो रो रहा था, तो मैं एक साल के बाद फिर गई उनसे मिलने के लिए, फिर से गई तो उसने कहा, बहन जी मेरा तो जीवन ही बदल गया, वो कैंसर का रोग कहां चला गया पता भी नहीं चला। ऐसे भी हैं। एक और मिसाल मैं आपको बताऊं, हम मेडिटेशन सिखाते हैं यहाँ, तो एक डॉक्टर आया था मेडिटेशन सीखने के लिए और उसने मुझे कहा कि मेरे पेशेंट ने मुझे एडवाइस दिया है कि आप मेडिटेशन सीखो। वैसे तो डॉक्टर्स में पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप मेडिटेशन सीखो, किसी को अगर माइनर हार्ट अटैक भी आ गया या हार्ट पेशेंट है तो उनको डॉक्टर जरूर ये उनको कहते हैं कि डाइट कंट्रोल हो, स्लाइस माइल्ड एक्सरसाइज हो और तीसरा मेडिटेशन हो, ये तीन बातें डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, आप करते होंगे। तो वो क्या हुआ, वो पेशेंट डॉक्टर के पास गया, उसको भी बहुत बड़ी बीमारी थी, तो डॉक्टर ने कहा कोई चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, हमारे पास बहुत मेडिसिन है, आप ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। दो तीन बार उसने डॉक्टर ने ये कहा चिंता मत करो, तो वो पेशेंट को थोड़ा गुस्सा आ गया, उसने कहा डॉक्टर साहब आप ये तो कहते हो चिंता मत करो पर कैसे नहीं करे वो तो बताओ। कैसे चिंता ना करे, केवल चिंता मत करो, चिंता मत नहीं करो ये कहने से चिंता मिट जाएगी क्या, पर कैसे नहीं करे, व्हाट इज द मेथड फॉर ओवरकमिंग दिस स्ट्रेस या जो भी चिंताएं हैं। अब वो डॉक्टर खुद भी हैरान हो गया, वो भी सोच में पड़ गया कि मैं उनको क्या बताऊं कि कैसे चिंता नहीं करे। तो इसलिए जैसे आपको हमारे अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना कि डबल डॉक्टर बनो, क्योंकि शरीर का डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने मेडिकल पढ़ाई की है और प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप बहुत होशियार है, बहुत ही प्रवीण है और बहुत आपने ऑपरेशंस भी किए होंगे तो सफलता मिलती भी होगी, अच्छी बात है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि 80% शरीर के रोगों का कारण तो मन है, इसीलिए साइकोसोमेटिक डिजीजेस में साइको पहले आता है। तो जब साइको पहले आता है तो पहले किसको ठीक करना है, साइको को ठीक करना है या सोमेटिक को ठीक करना है, पहले किसको ठीक करना है, अवश्य मन को ठीक करना है। और अगर हम केवल तन के डॉक्टर हैं, मन का ख्याल ही नहीं रखा, तो वो तन की बीमारी भी कैसे जाएगी, नहीं जाएगी। इसीलिए पहले मन को ठीक करना पड़ेगा और जब मन को ठीक करेंगे तब तन को ठीक कर पाएंगे। इसीलिए कई बार कहते लोग कि दवाई तो असर करती नहीं है, अब दो कारणों से असर नहीं करती है, एक तो विश्वास भी चाहिए डॉक्टर में, विश्वास अगर नहीं होगा ऐसे दवा तो ले रहे पर विश्वास नहीं है कि पता नहीं ये डॉक्टर सही है या नहीं सही है, ठीक दवाई दे रहा है नहीं दे रहा है, विश्वास बड़ी चीज है। और अगर विश्वास है तो वो पानी का भी इंजेक्शन लगाएगा तो भी ठीक हो जाएगा, ऐसे भी होता है, केवल पानी का इंजेक्शन लगाया और कुछ नहीं किया लेकिन कहेगा ये डॉक्टर बहुत अच्छा है मैं ठीक हो गया, जबकि और कुछ नहीं था। पर विश्वास नहीं है तो कितनी भी दवाई उसको मिले तो भी ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात, उसका अपना कर्म भी है, उसका अपना भी हिसाब किताब है, डॉक्टर कितनी अच्छी से अच्छी दवाई दे लेकिन अगर उस पेशेंट का अपना कोई कर्मों का हिसाब किताब है तो ठीक नहीं होगा। और अदर वे राउंड भी, कर्मों का हिसाब किताब अच्छा है तो डॉक्टर उसको कुछ भी ना दे, नाम का कुछ दे तो भी अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कर्म की गति बड़ी गहन है और साधारण इंसान कर्म की गति को नहीं समझता है, और परिणाम स्वरूप वो समझता है मैं करता हूं, मैं, ये अहम भाव आ जाता है। जैसे दान में हम देखते हैं कोई दान करता है लेकिन अहम भाव से दान करता है, मैंने इतना दान किया, मैंने इतना दान किया, वो दान का कभी पुण्य नहीं बनता है, कभी पुण्य नहीं बनता है। वो दान का पुण्य तब बने जब वो दान गुप्त हो। कहा जाता है एक हाथ अगर दान करता है, दायां हाथ अगर दान करता है तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, इसको गुप्त दान कहते हैं। गुप्त दान महाकल्याण, इतना गुप्त दान हो जो लेफ्ट हैंड को पता न चले राइट हैंड ने दान किया। कई यहां तक कहते हैं मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ये गुप्त दान है, क्योंकि वही पुण्य बनाता है। और दान दे करके अगर मैंने उसका वर्णन किया और ही मैंने किया और वर्णन करते गए तो उसका पुण्य धीरे धीरे कम ही होता जाएगा। इसीलिए पहले जमाने में कहते थे, हाँ, दान के लिए कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, क्योंकि बहुत नेकी होती थी, दरिया जितनी नेकी, हाँ, सागर कितना विशाल है, तो हर एक के अंदर नेकी करने की एक भावना होती थी, सबकी सेवा, सबकी दिल से प्यार से सेवा करने की भावना होती थी, परंतु नाम नहीं अपना, मैंने किया ये नहीं, नेकी कर दरिया में डाल। और नेकी के लिए कहा जाता है नेकी और कुछ कुछ, कोई नेक काम करना है तो उसके लिए पूछना भी नहीं होता है कि मैं करूं, देखिए 10 लोग से पूछेंगे 5 लोग कहेंगे करो, 5 लोग कहेंगे क्यों करो, नहीं करो, तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारा क्या जाता है, क्या मिलेगा तुमको, क्यों करना है। तो नेकी और पूछ पूछ, पूछते रहेंगे तो नेक काम नहीं होगा। इसलिए अच्छे कार्य के लिए कभी सोचना नहीं है, करो तो आपका पुण्य बन जाएगा, आपको दुआएं मिलेगी, दिल से करो, हमें कुछ फल मिले उसकी चिंता मत करो। गीता के अंदर साफ ये महावाक्य है, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम, कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है लेकिन फल की चिंता मत करो। अगर फल अच्छा मिला, सफलता मिली तो उसका अभिमान भी मत करो, ये सब हाथ तो मेरे थे, शक्ति तो ईश्वर की थी, इतनी निरअहंकारीपना चाहिए। और अगर असफलता मिली तो भी दुख नहीं है, क्योंकि मैंने अपना कर्तव्य ठीक पालन किया। अगर मेरे कर्तव्य में कोई कमी आ गई तो फिर मेरा दोष होगा, पर मैंने अपना कर्तव्य ठीक पालन किया, दिल से किया, लगन से किया, अपना श्वास समय संकल्प शक्ति सब लगा के किया, पर फिर भी सफलता नहीं मिली तो उसका दुख भी नहीं करना होता है, दुख भी नहीं। जैसे हम नर्सेस को खास देखते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन वाले भी यहाँ आते हैं, तो कई ऐसी नर्सेस होती है वो शादी नहीं करती है, तो हम उनसे पूछते हैं आपने शादी नहीं की, तो कहा नहीं, आई एम मैरिड टू माय प्रोफेशन, मैं अपनी प्रोफेशन से ही शादी है हमारी, माना सारा टाइम प्रोफेशन का ही है। और परंतु हम उनको देखते हैं पेशेंट्स की इतनी प्यार से भी सेवा करेगी, और अगर वो ठीक हो जाता है तो उसको कंग्रेचुलेशन देगी, क्योंकि घर जा रहा है, खुशी खुशी घर जा रहा है, वो उस नर्स को कितनी दुआएं देता है कि आपने मेरी इतनी प्यार से सेवा की, डॉक्टर को भी कितनी दुआएं देता है वो। पर मान लो उसका हिसाब किताब उतना ही था और वो मर गया, मान लो अब मर गया, क्या कर सकते हैं, कहेंगे उनका हिसाब किताब इतना था, पर अंदर में मन तो नहीं खाएगा कि मेरे कारण वो मर गया, मैंने कुछ गलती की, मैंने उनका ध्यान पूरा नहीं रखा इसलिए वो मर गया। तो मन खाएगा जरूर, ऐसे नहीं कि नहीं खाएगा, परंतु अगर हमने अपने तरफ से बहुत कुछ किया और फिर भी उनका हिसाब किताब उतना ही था, मर गया, तो हम कहेंगे वो प्रभु का प्यारा हो गया, और क्या कहेंगे। तो हम कोई दुखी नहीं होंगे क्योंकि हमने अपना कर्तव्य पालन किया। और अगर वो ठीक हो गया तो हम उसके उनके प्रति वो मोह भी नहीं जताएंगे कि मैंने किया, मैं अभिमान भी नहीं जताएंगे मैंने किया, ये दोनों बातें नहीं होगी। तो मेडिकल प्रोफेशन क्या है, हम तो यही कहते हैं इसे सेल्फ एक्सटिंक्टिंग प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन डज नॉट मीन कि हम परमानेंट पेशेंट्स बना दे, जैसे वकीलों को भी हम यही कहते हैं आप डबल वकील बने, सिंगल वकील मत बने, परमानेंट क्लाइंट मत बनाए, आप करते जाओ जो कुछ करना, मैं बैठा हूं, मैं आपका केस जीत लूंगा, ऐसा परमानेंट क्लाइंट मत बनाए। इसी प्रकार परमानेंट पेशेंट मत बनाए कि आपको कुछ भी होगा मैं बैठा हूं ना, लेकिन उसको कैसे शफा मिले यही लक्ष्य रखना होता है। और उस लक्ष्य से अगर हम दिल से सेवा करते हैं तो अवश्य वो लक्ष्य पूरा होता है। तो हेल्थ केयर भी ब्लेसिंग्स बहुत काम करती है, डॉक्टर के लिए भी काम करती है, पेशेंट के लिए भी काम करती है, क्योंकि डॉक्टर को तो अपने भी हेल्थ का ध्यान रखना है ना। हमने कई हार्ट के डॉक्टर्स देखे हैं, हार्ट सर्जन्स, वो भी हार्ट फेल से मर जाते हैं, हार्ट फेल से मर जाते हैं, बहुत देखे हैं। तो दूसरों का हार्ट ठीक करने जाते पर खुद का हार्ट ठीक नहीं कर पाए। इसीलिए हम ये जो मानव जीवन है, हम इस मानव जीवन में हमें देना है, देना है, ये सदा भावना रहे, लेना है लेना है ये भावना नहीं रहे। देना है माना दाता बनना है, और यहां हम लोग यही कहते हैं जो देता है वो देवता है, देवता। प्रकृति के लिए हम कहते हैं भारत की संस्कृति में हर तत्व को देवता रूप माना गया है ना, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, माँ भी मानते हैं, धरती माँ, तो देवता का रूप मानते हैं। देवता माना वो प्रकृति सदा देती है, सदा देती है, गीत भी उसी अनुसार गाते हैं, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपनों का दूजो को जो दे वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। तो धरती का भगवान कौन बन सकता है जो दाता बन के देता है, और ये न सोचे कि अगर हम देते जाएंगे तो हम खाली हो जाएंगे, ये कभी नहीं सोचना है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, क्योंकि जो देता है उसको रिटर्न 100 गुना मिलता है। जीवन में हम ये हर पल पर देखते हैं, जीवन में हर पल पर आप जो देंगे वो आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। आप किसी को दुख देंगे तो दुख आपको जरूर मिलेगा, आप किसी को सुख देंगे तो सुख रिटर्न में मिलेगा। जो आप दोगे, जैसे हम कहते हैं जैसा बीज वैसा फल, जैसा बीज वैसा फल, ये जीवन के अंदर भी काम आता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा। एक कहानी सुनाते हैं, एक जोक है कि दो व्यक्ति, दोनों ने भगवान को बहुत याद किया, प्रार्थना की, तो भगवान उन पर प्रसन्न हुए और भगवान ने उनसे पूछा आप क्या चाहते हो, मैं प्रसन्न हुआ दोनों पर, क्या चाहते हो। तो एक ने कहा भगवान बस मुझे मैं सदा लेता रहूं, बस यही कहता गया। और दूसरे ने कहा, बस भगवान मैं सदा देता रहूं। अब भगवान ने दोनों की इच्छा कैसे पूरी की? जिसने कहा मैं सदा लेता रहूं, उसको भिखारी बना दिया। भिखारी क्या करता है? भिखारी माना लेता है, हर वक्त वो मांगता ही रहता है, तो उसको भिखारी बना दिया। तो भिखारी माना लेता ही रहो भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेता ही रहो। और जिसने कहा मैं देता ही रहूं, तो उसको धनवान बना दिया। अब हम क्या चाहते हैं? लेता ही रहूं या देता ही रहूं, क्या बनूं? तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। तो इसीलिए परमात्मा भी हम आत्माओं को यही कहते हैं कि आप दिल से दुआएं भी देते जाओ। चलो और कुछ नहीं दे सकते हो, दिल से दुआएं देते जाओ। कई होते ना भैया और कुछ नहीं दे पाते हैं, गरीब है दुआएं नहीं दे पाता है, तो चलो दुआएं ही दो। जैसे एक भिखारी था, वो किसी मिठाई के दुकान में गया और थोड़ी सी मिठाई मांगी, साहब भूख लगी है थोड़ी मिठाई दे दो। तो उस दुकानदार ने उसको जैसे गालियां देके भगा दिया, तो अंत में क्या कह के गए, अच्छा साहब मिठाई मत दो लेकिन कम से कम मीठा तो बोलो, इसमें तो आपका कोई खर्चा नहीं होगा, मीठा तो बोलो। मीठा बोलने में तो खर्चा नहीं होगा ना, तो क्या कम से कम उतनी मिठास है हमारे जीवन में? हम तो कहते हैं डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड, वो जो कहेंगे पेशेंट उसको मानेंगे। भगवान का जैसे डर रहता है, भगवान ने जो कहा वो करना है, क्योंकि भगवान का काम कर रहे हैं। किसी को ठीक करना ये जैसे भगवान का कार्य करते, किसी का दुख दर्द लेना ये जैसे भगवान का कार्य है। तो क्या डॉक्टर्स इस ख्याल से सेवा करते हैं कि आई एम लाइक नेक्स्ट टू गॉड? जैसे जज के लिए कहा जाता है नेक्स्ट टू गॉड, क्योंकि जैसे भगवान न्यायकारी है वैसे जज भी न्यायकारी होना चाहिए, पक्षपात रहित, बिना पक्षपात के। अगर वो बाइस्ड है, किसी के पक्ष में है, तो वो सही जज नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार डॉक्टर भी अगर पक्षपात के साथ है वो सही डॉक्टर नहीं कहलाएगा, क्योंकि सेल्फ एक्सटिंक्टिंग प्रोफेशन है। पेशेंस बढ़ाना ये कोई डॉक्टर का लक्ष्य नहीं होता है। मुझे याद है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, वो यहाँ आए थे और हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल देखने के लिए गए। तो उन्होंने कहा मैं इस हॉस्पिटल को क्या दुआएं दूं, क्या सदा आपके पास पेशेंट्स आते रहे? क्या यही दुआएं दूं, सदा ही पेशेंट्स आते रहे, ये दुआ देना ठीक है सदा पेशेंट्स आते रहे? लेकिन जो पेशेंट आए वो ऐसी शफा पाके जाए, इतनी दुआएं पाके जाए जो वो अनेकों की जाकर के सेवा करे। शिव परमात्मा ने हमारा जो ग्लोबल हॉस्पिटल है ना, उनको बहुत सुंदर वरदान दिया था। बाबा ने कहा था ये हॉस्पिटल नहीं है, ये होली प्लेस है। जैसे कोई होली प्लेस पर जाता है तो कितनी उसको शांति मिलती है, पर वो शांति कोई ऐसे ही नहीं मिलती है। जो वहां लोग हैं उनके वाइब्रेशन से शांति या अशांति होती है, कोई चार दीवारों से शांति या अशांति नहीं होती है। परंतु मनुष्यों के वाइब्रेशंस, अगर उनके मन में शांति है तो वातावरण में भी शांति होगी। किसी हॉस्पिटल में हम जाते हैं लगता है कि बस यहाँ से जाएं, दिल नहीं होती हॉस्पिटल में जाना, क्योंकि इतना स्ट्रेस होता है जो बात मत पूछो। और कहाँ होता है, सब काम इतना व्यवस्थित चलता है, इतना अच्छा चलता है, इतना सब खुश है, तो दिल होती है कि हाँ ये तो सचमुच ये होली स्थल है। आप हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में जाएंगे ना, माउंट आबू देखा भी होगा, तो सचमुच लोग कहते हैं ये तो लगता ही नहीं है। चाहे दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं, पर हमारे डॉक्टर्स कैसे प्यार से सेवा करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर डेडिकेटेड, समर्पित रूप से सेवाएं देते हैं, सदा मुस्कुराते रहते हैं। एक मुस्कुराहट ही डॉक्टर की पेशेंट की आधी बीमारी दूर कर लेता है। अगर पेशेंट डॉक्टर के पास जाए यार बोलो बोलो क्या काम है, बोलो बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, वो तो जरा वहीं घबरा जाएगा। लेकिन इतना दिल से उसकी सेवा हो जो वो समझे कि मेरे मुझे जितनी प्यार से सेवा दी उसने और किसी को नहीं दी होगी, और इसको हम कहते हैं दुआएं देना। तो हमेशा यही लक्ष्य रखें कि दुआएं देनी है, देना है, देना है। और देने की भावना होगी तो आप दाता बन करके देंगे, और जिनकी आप दवाई कर रहे हैं वो भी आपको दाता समझ करके, भगवान समझ करके आपको दुआएं देगा। और जितनी आप दुआएं कमाते जाएंगे उतना आपका ये जीवन तो सफल होगा ही, लेकिन जन्म जन्म आपके सफल होंगे, ये हम गारंटी करते हैं, सचमुच हम गारंटी करते हैं। क्योंकि अंत सुहाला होना चाहिए, अंत का हमारा कैसा समय होता है। अगर हमने जीवन में दुआएं कमाई है तो हमें कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, इस जीवन की भी चिंता नहीं तो आगे जन्मों की भी चिंता नहीं। हमारी बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि जी जिनका ये फोटो है, दादी हमेशा कहती थी, हाँ दादी जी से पूछते थे कि दादी जी अब क्या पुरुषार्थ करती हो, क्या पुरुषार्थ करती हो, यानी इंटरनल एफर्ट्स जो मेडिटेशन करना और धारणाओं पर चलना, क्या पुरुषार्थ करती हो। दादी जी कहती थी मैं तो दुआओं पर चल रही हूँ, दुआएं मुझे उड़ा रही है, दुआएं मुझे उड़ा रही है, ये दादी जी कहते थे। पुरुषार्थ में ना सम लेबर, हार्ड वर्क नहीं। तो डॉक्टर्स भी ये क्यों सोचते आज मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पेशेंस थे, बहुत थक गया, पर सचमुच आप अगर दुआएं साथ साथ कमा रहे हैं कभी थकावट नहीं आएगी। धन मिले ना मिले वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धन तो हाथों की मैल है, कहा जाता है धन क्या हाथों की मैल है, वो तो आता ही जाता है, क्या बड़ी बात है। तो धन कोई बड़ी चीज नहीं है, पर धन से ज्यादा महत्व तो अवश्य स्वास्थ्य का है, जरूर हम मानेंगे, हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ डेफिनेटली। इसलिए कई कहते हैं बहन जी डॉक्टर साहब कितना भी खर्चा हो कोई बात नहीं पर ये ठीक हो जाए, तो हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ, बट मोर इम्पोर्टेंट देन हेल्थ इज कैरेक्टर, हमारा चरित्र। और चरित्र के लिए कहा जाता है अगर धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, क्योंकि फिर मेहनत लगती है वापस स्वास्थ्य लाने में, इतना सहज नहीं आता है, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया। इस जीवन के लिए तो सब कुछ गया, लेकिन जन्म जन्म के लिए सब कुछ गया। कैसे चरित्र गया, मानो पकड़े गए, कोई भी गलत किया केस या कुछ भी पकड़े गए और उसको जेल में डाला। अब जेल में वो शराब पिएगा, ये करेगा, बहुत कुछ करेगा, पता नहीं क्या क्या जेल में करेंगे चिंताओं के कारण, और उसी जेल में उसकी मृत्यु हो जाती है मान लो, और मृत्यु हो गई, अब उसका अगला जन्म कैसा होगा, क्या उसकी सोच थी उस अनुसार वो वैसा ही अगला जन्म होगा, वही जन्म होगा जहाँ ये सब शराब वराब सब यही चलता होगा, तो उसका तो जीवन तो बर्बाद पर आगे के जन्म भी बर्बाद। तो हम कहते हैं चरित्र गया तो सब कुछ गया, पर उसमें एक एडिशन करते हैं लाइन, चरित्र गया सब कुछ गया, एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म के लिए। क्या हम अपना जीवन ऐसा बनाना चाहते हैं? कई ऐसे हैं इतना गलत काम करते हैं, बात मत पूछो। कितने रैकेट्स होते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में भी बहुत रैकेट्स होते हैं, इतने गलत काम करते हैं। तो कई कहते हैं इतने गलत काम कर रहे हैं लेकिन मौज कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, गलत करके भी कमा रहे हैं। और कोई बेचारे इतनी सच्चाई से काम करते हैं, सच्ची सच्चाई पर चलते हैं और उनको तो कुछ खास मिलता भी नहीं है। तो भगवान के घर में ये तो अन्याय है, जो सच्चाई से काम करते उनको तो कुछ भी नहीं मिलता और जो गलत काम करते उनको तो बहुत कुछ मिल जाता है और वो तो मौज करते हैं। लेकिन ये भी कहावत बहुत प्रसिद्ध है, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर अगर मौज कर रहा है, रैकेट्स कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वर्णन करने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं क्या क्या गलत काम मेडिकल प्रोफेशन में होते हैं। अगर वो कर रहा है और खूब कमा रहा है, ये कुछ उसका पूर्व जन्म का पुण्य है जो जमा है अभी तक, वो पुण्य उसका उसको मदद कर रहा है। लेकिन ये जो पाप कर रहा है ना, ये जमा होता जा रहा है और वो पुण्य जब खत्म होगा फिर तो ये पाप का की भोगना तो मिलेगी। अभी भले पता नहीं चलता है कि वो तो मौज कर रहा है और देखो जो सच्चे सच्चाई से करता है उसको तो कुछ भी नहीं मिलता है। ये कलयुगी दुनिया है, इसमें सब झूठ ही झूठ है, वो भी हम समझते हैं। लेकिन हमें कैसा रहना है, और क्या कर रही हैं वो करने दो, पर मुझे क्या करना है, और जो व्यवहार करते कैसे करते हैं वो उनका हिसाब किताब कर्मों का, लेकिन मुझे क्या करना है। हम किसी और को दोष देने की बजाय खुद को देखें, जैसे हम एक उंगली दूसरी तरफ देते हैं, तीन उंगली हमारे तरफ होती है, इसका मतलब हम तीन गुना अपने तरफ देखे, उस पर तो एक ही गुना एक ही तरफ एक ही बार देखे एक तरफ, पर तीन गुना मुझे अपने आप को चेक करना है। और जब हम इस प्रकार से अपनी चेकिंग करते हैं, अपनी स्थिति की चेकिंग करते हैं, तो देखिए आपके पेशेंस भी आपको दुआएं देंगे, आपकी दिल की दुआएं उनको मिलेगी और दुआओं से ही आप पलते रहेंगे और ये जन्म अपना सफल करके ये जन्म भी श्रेष्ठ तो जन्म जन्म अपना श्रेष्ठ बनाएंगे। यही हमारी शुभकामना है आप सभी भाई बहनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।